मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 16 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 15 दिन की होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अभिनव पाठक, आप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, प्रवीण कुमार आप रांची झारखंड से हैं और पूनम गुप्ता आप फरीदाबाद हरियाणा से हैं। तो अभिनव, प्रवीण और पूनम आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार अपने उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहूंगा जो बस अब कुछ दिनों के बाद ही यहां भोपाल की क्लास अटेंड करने के लिए पहुंचने ही वाले हैं भोपाल में। फ्रेंड्स आज मैं आपसे शायद एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसे आप सब में से बहुत से लोग व्यवहार में भी लाते होंगे या हो सकता है कि कुछ लोग व्यवहार में न भी ला रहे हों, लेकिन आज मैं जिस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं ये केवल अभी के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे जीवन के लिए है। और इसलिए मैं पूरे जीवन के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव हम सबकी मानसिक शक्ति पर पड़ता है। इससे हमें जो मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है वह अद्भुत होती है। मित्रों आप सब आने की तैयारी में लग गए होंगे या आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो समझते हैं कि यार ठीक है तैयारी क्या करना है, जाना ही तो है, सुबह निकलना है तो ठीक है दोपहर में तैयारी कर लेंगे, राइट। इसी तैयारी के संबंध में ही कुछ बातें, थोड़ी सी बातें मैं आप सबसे करना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह फ्रेंड्स की जो भी आप तैयारी करें प्लीज तैयारी खुद कीजिए। अपनी तैयारी का जरा सा भी दायित्व, तो थोड़ा सा भी दायित्व तो किसी दूसरे पर मत सौंपिए, दूसरे को मत दीजिए। मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने घर में रह रहे हैं, खासकर जो ऑलरेडी बाहर रह करके और सीधे भोपाल आएंगे तो उन्हें तो अपनी तैयारी खुद ही करनी है, लेकिन जो घर में होते हैं तो वो माँ से कह देंगे, बहन से कह देंगे, चाची ताई इस तरह से अगर कोई है कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरा ये सामान निकाल देना, मेरा फलाना वो कर देना, इस तरह से आदेश दे देते हैं या यूं कह लीजिए कि अनुरोध कर लेते हैं। अब ये उनके अपने व्यवहार के ऊपर है कि वो आदेश की भाषा में बात करते हैं या अनुरोध की भाषा में बात करते हैं। मेरा यहां आप सबसे निवेदन है कि उसे अब बदलिए। उनकी मदद करने की स्थिति में आप आ गए हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उनसे मदद पाने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे बहुत फायदे होंगे। पहली बात तो यही है कि आप अपनी चीजों को जितने सही तरीके से समझ करके रख पाएंगे, दूसरे उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हमेशा होता है। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, हमेशा कम्युनिकेशन गैप होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब चीजें रखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो बहुत सी नई चीजें उन्हें देखकर, जो चीजें आप रख रहे हैं उनको देख करके आपको और चीजें याद आ सकती हैं। दूसरे लोग रखेंगे तो आपको याद आने की संभावनाएं बिल्कुल रह ही नहीं जाएंगी। और तीसरी बात कि जब आप चीजें रखेंगे और जब रखकर यहां आ जाएंगे और जब उन चीजों को निकालेंगे तो आपको एक एक चीज का ज्ञान होगा कि आपने चीजें कहां कहां रखी हुई है। हो सकता है कि यहां पहुंचने के बाद आपके पास समय कम बचा हो और आपको लग रहा हो कि जल्दी से जल्दी क्लास में पहुंचना है, लेकिन अफरा तफरी मची हुई कि ये चीज कहां होगी, ये चीज कहां होगी, और दिमाग बेवजह चिड़चिड़ा रहा है। मुझे समय से ज्यादा दिमाग के चिड़चिड़ाहट की चिंता होती है क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग चिड़चिड़ाएगा, आप देखते हैं ना कि जो गीली लकड़ी होती है उसे जलाइए तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगता है, तो उसमें आग नहीं निकलती, धुआं निकलता है। हमारे चिड़चिड़ाहट वाले दिमाग से याद रखिए कि लपटे नहीं निकलती, प्रकाश रोशनी नहीं निकलती है, उससे धुआं निकलता है, और वो भी कसैला धुआं जो दूसरे की आंखों को भी परेशान करता है। दूसरे भी आपके चिड़चिड़ाहट से परेशान होते रहते हैं, उनमें भी एक चिड़चिड़ाहट पैदा होती रहती है। आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें क्या, इस पर ध्यान देना। नहीं मित्रों, यहां आपको यही सीखना पड़ेगा कि कोई बात छोटी नहीं होती है, हर बात अपने आप में संपूर्ण होती है, और संपूर्णता कोई छोटी चीज नहीं होती, हर चीज अपने आप में पूर्ण होती है चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। बस सीधी सी बात है। तो इसे भी आप अपनी तैयारी को एक संपूर्ण मान करके चलें। तैयारी अपने आप में एक कंप्लीट चीज है, एक कंप्लीट वर्क है और उसे आपको ही करना है। सारी चीजों पर, अपनी चीजों पर आप खुद कमांड रखिए। आप पाएंगे अभी आप तुरंत इन चीजों को महसूस नहीं करेंगे, आगे जाकर के इन चीजों के जो बहुत अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वो आप महसूस करेंगे। तब आपको पता लगेगा कि आपने की तो कितनी छोटी सी चीज है या कितनी छोटे से आदत को आपने बदला है, लेकिन इसने तो आप में कितने महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं, ये आप आगे चल करके मित्रों अनुभव करेंगे। तो बस आज मैं आप सबसे इतनी ही बातें करूंगा, कल मैं आप सबसे फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करूंगा। मित्रों कल भी आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनना मिस न करें। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय में हम लोग 2018 के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं मेंस के, उसको लेकर थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन देखते हैं कि कितनी बातें की जा सकती हैं और अगर जरूरत हुआ महसूस हुआ तो फिर हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर न्यूज में है, खासकर 2018 के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं मेंस के, उनको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मार्च तक हमारे जितने भी पंचायत हैं उन सबको डिजिटल कर दिया जाएगा, यानी कि उनको ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसमें फिर ध्यान दिया होगा आपने, आंकड़ा भी था कि 2.5 लाख पंचायत, अगर आपने याद, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब चौथी औद्योगिक क्रांति की बात कही थी, कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, पिछले वीक की, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख ग्राम पंचायतों को हम डिजिटल कर चुके हैं, मतलब वहां तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है और बहुत जल्दी हम इसे पूरा कर लेंगे। तो अब वो किया गया है, मार्च तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अब आप देखें कि जैसे ही आप इस काम को पूरा कर लेते हैं, अब सुनने में सामान्य सी बात आपको लग सकती है, लेकिन इनके पूरा होते ही आप ये कह लीजिए कि हमारी जो ग्राम पंचायत की प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। और इसी को आपको विजुलाइज करना है। देखिए आज के संदर्भ में अब पंचायत कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं रह गई है, है ना, ये रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो लगभग लगभग हर साल आपको जो रूट लेवल की डेमोक्रेसी है उसके बारे में कुछ न कुछ प्रश्न पढ़ने को मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही वो डिजिटल हो जाएंगे तो अब आप सोचिए कि वहां डिजिटली हेल्थ की फैसिलिटी हो जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगी, ई बैंकिंग की फैसिलिटी हो जाएगी, सूचनाएं सारी पता लगा कि वहां कंप्यूटर और दूसरे माध्यमों से उपलब्ध हैं, आपको अपने जमीन के कागजात देखने हैं, प्रॉपर्टी का नामांतरण, कितनी सारी चीजें बदल जाएंगी, कल्पना करके देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, मतलब हमारी ग्राम पंचायतें इसकी वजह से कितने इम्पावर्ड हो जाएंगी, और अगर ग्राम पंचायतें इम्पावर्ड हो गई तो हमारे गांव के लोग कितने इम्पावर्ड हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद शायद ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण हो जाना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा ग्राम्य जीवन में। मित्रों इसके बाद जो दूसरी खबर थी, आपने सुना कि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। इसको जरा सा देख लीजिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है और खुदरा मूल्य सूचकांक क्या होता है। समय की कमी के कारण मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, देखिए आगे कभी हो सकता है कि इस पर बात हम सब करें। आपने ये भी खबर सुनी कि जो तीन मूर्ति भवन है, जो बेसिकली जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उनका निवास स्थान हुआ करता था, अब उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला जाएगा, जहां जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यों और वस्तुओं का को प्रदर्शित किया जाएगा, उस भवन का शिलान्यास किया गया है। तीन मूर्ति भवन, खासकर वहां जो चौराहा है उसमें तीन मूर्तियां लगी हुई हैं और वहीं पर तारामंडल भी है, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनका निवास स्थान है वो बिल्कुल उसी से सटा हुआ है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल उसी से सटा हुआ है, संसद भवन बिल्कुल उसके पास में ही है, वहीं है ये तीन मूर्ति भवन। और तीन मूर्ति भवन से आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो आपको वो स्थान मिलेगा बिरला हाउस, जहां गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी, चूंकि हम लोग वहां काफी समय तक रहे हैं इसलिए वहां का नक्शा बहुत अच्छे से मालूम है। में। खैर दोस्तों, एक जो और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है वो है महिलाओं को मुख्य धारा के धारा में लाने के बारे में जो बातें कही गई, और महिलाओं का विकास, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, महिलाओं के अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस में है। बकायदे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है और बकायदे हर साल प्रश्न भी पूछा जाता है। कुछ तथ्य आपको मिलेंगे, तो महिला किसान दिवस कल मनाया गया और आप उसी में कुछ आंकड़े पाएंगे। देखिए होता क्या है कि जो एक सामान्य तैयारी होती है और एक जो विशेष तैयारी होती है सिविल सर्विस की, उसमें फर्क यही होता है कि विशेष तैयारी करने वाला स्टूडेंट उन महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेता है कि अरे ये तो महत्वपूर्ण है, और इसके बाद उसे नोट कर लेता है और नोट करने के बाद समय समय पर उसे दोहराता भी है। जैसे कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए, न्यूज में ही थे, एक बात कही गई कि जो हमारे यहां की जो मुख्य फसलें हैं उन मुख्य फसलों में जो महिलाओं का योगदान है वो 75% है। कल्पना करके देखिए कि 75%, यस, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी भागीदारी है। और जो आप सब में से जो गांव में होंगे वो देखते हैं कि महिलाएं घर का तो काम कर ही रही हैं सब कुछ, इसके साथ ही साथ घर में पशुपालन का हो रहा है तो पूरा महिलाएं संभालती हैं, उनके लिए चारा लाना महिलाएं करती हैं, जब खेतों पर काम होता है तो बकायदे महिलाएं जाती हैं काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं महिलाएं। तो उसमें दिया हुआ था कि जो प्रमुख फसलें हैं उसमें उनका योगदान 75% है, और पशुपालन और मछली पालन में तो 95% है। सोचिए, मतलब पूरी तरह से जो भी आय हो रही है पशुपालन और मछली पालन से वो इनफैक्ट महिलाओं के द्वारा ही हो रही है, और जो पूरी तरह से घर चला रही है, अपना पूरे आर्थिक स्रोत बनी हुई है, आर्थिक स्तंभ बनी हुई है ग्रामीण परिवार में, उसमें 18% परिवार महिलाएं चला रही हैं। तो ये आंकड़ों के माध्यम से ये चीज प्रूफ होती है, इन आंकड़ों के माध्यम से, कि वास्तव में महिलाएं कितना महत्वपूर्ण रोल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर रही हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं माने बल्कि हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जीडीपी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे मित्रों, आपको मालूम होने चाहिए। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वो है 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि इस बार के प्रश्न पत्र काफी सरल आए हैं, काफी सरल आए हैं, नो डाउट। मुझे नहीं लगता है कि अब इससे भी ज्यादा सरल इसमें सिविल सर्विस के प्रश्न पत्रों को बनाया जा सकेगा। देखिए जो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पेपर होता है आईएएस का, मेंस का, वो सेकेंड पेपर होता है, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर। जहां तक फर्स्ट पेपर का सवाल है जिसमें हिस्ट्री पर क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो देखिए करेंट अफेयर्स कुछ ज्यादा होते नहीं है, विषय में भी बदलाव की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो पुस्तकों से ही काम चल जाता है। लेकिन आपको अपनी बात करंट अफेयर्स के माध्यम से ही रखनी होती है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो, बशर्ते कि उसमें संभावना दिखे। लेकिन जो सेकेंड पेपर होता है तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होता है, और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बहुत से स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आता है कि वो शुरू कहां से करें और उसका अंत कैसे करें, तो फिर बीच का तो सवाल ही नहीं उठता है कि क्या लिखें। लेकिन इस बार का अगर आप सेकेंड पेपर उठा करके देखेंगे तो सेकेंड पेपर में, मतलब मुझे आश्चर्य ही हुआ कि बहुत से क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं, एकदम डायरेक्ट पूछे गए हैं, मतलब ऐसा लगता है कि किताबों से पढ़ करके ही बात बन जाएगी। दोस्तों मैं केवल समय को देखते हुए एक प्रश्न आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को खुद एक बार पढ़ करके इसे समझने की कोशिश करें जो मैं कह रहा हूं उसे। तीसरा क्वेश्चन है जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर का कि किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होते हैं। इंग्लिश में व्हाट अंडर सर्कमस्टेंसेज कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो व्हेन सच ए डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। अब आप देखिए कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल पर सीधे पूछा गया है कि क्यों किया जाता है, और जब उसको किया जाता है तो उसके समय क्या क्या शर्तें होती हैं, उस समय की क्या स्थिति आती है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब इसमें करंट की भी कोई गुंजाइश नहीं है, ना अपने दिमाग को ज्यादा लगाने की गुंजाइश है, बस इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न का उत्तर कि आपने कितने अच्छे से इसे पढ़ा हुआ है और कितने अच्छे से अपने दिमाग में उसे बनाकर रखा है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज मैं आप लोगों को काफी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मित्रों आप सब अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, माधव सिंह गया बिहार से, मनीष कुमार पनसेरिया कटनी मध्य प्रदेश से, अश्विनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, योगिता दिल्ली से, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, चंदा जांगीर और ओम प्रकाश गुप्ता ह्यूस्टन अमेरिका से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।